واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
الحمد لله شروع کرتے ہیں نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوس بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير سورة ياسين آیت نمبر 13 سے 32 13-32 دوسرا رکوع ہے آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے لئے کیا ہے सूरत यासीन जो है बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत है कुरान पाक की। हम इसको इस वक्त इस एंगल से देखेंगे कि इसमें हमारे लिए अमल की क्या बातें हैं, और अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हम इसको बेहतरीन तरीके से ले सकें। पहले हल्का सा तर्जमा करूँगी पूरे सबक का, तो आइए तर्जमे को साथ लेकर फिर इसमें से साथ साथ छोटी छोटी अमल की बातें लेंगे। तफसीर के बहुत सारे एंगल होते हैं, लेकिन इस वक्त जिस एंगल से हम सामने रखेंगे वो क्या है कि सूरत यासीन जो इतनी कसरत से पढ़ी जाती है, असल में उसका पैगाम क्या है। आयत नंबर 13, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वद्रिब लहुम मसलन असहाबल करियत इस जा अहल मुरसलून, और बयान कीजिए इनके सामने उस बस्ती का किस्सा, किस बस्ती का किस्सा जिसके पास हमारे भेजे हुए आए। कैसे पढ़ेंगे इसको? इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि इसमें रसूल आए थे। अब किसी बस्ती की बात है जिसमें कोई रसूल भेजे गए थे। इज़र सलना इलैहि मुस्नैन, जब हमने इनकी तरफ दो रसूल भेजे। अब ये कौन सी बस्ती थी इसको बाद में बात करेंगे, लेकिन कोई भी बस्ती थी और दो रसूल आए, लोगों ने क्या किया? फकज़्ज़बूहुमा, उन्होंने इन दोनों को ही झुठला दिया। क्योंकि जिनके नसीब में हिदायत नहीं होती, अगर वो एक मौके का इनकार करें तो वो दूसरे मौके का भी इनकार कर सकते हैं, एक नबी का इनकार करें तो दूसरे का भी कर देंगे। अल्लाह ताला ने क्या किया? हिदायत का सिलसिला मुनक़ते नहीं किया, बल्कि फ़ज़स नबी सालिस, तीसरे को मदद के तौर पे भेज दिया। क्योंकि अल्लाह ताला अल-हादी हैं, और अल-हादी का काम लोगों को हिदायत दिलवाना है। अल्लाह ताला लोगों के झुटलाने से मायूस नहीं होते और उनको सेकंड थर्ड चांस देते रहते हैं, लेकिन जो नहीं मानते फिर वो नहीं मानते। फ़कालु इन्ना इलैकुम मुरसलून, इन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। अगर इतनी आयतों को एक स्ट्रेच में पढ़ें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्हें मिसाल के तौर पर इन बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि इसमें रसूल आए थे, हमने इनकी तरफ दो रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुटला दिया, फिर हमने तीसरा मदद के तौर पर भेज दिया, और इन सब ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। सवाल पैदा होता है कि ये कौन सी बस्ती थी, ये कब का वाकया है? तो याद रखिए कि कुरान पाक में बहुत सारे वाक्यात इस तरह के बयान किए गए हैं कि एक एक लफ्ज़ के साथ उसमें चीज़ों को बयान नहीं किया गया। अब इस वक्त अगर हम वक्त इस पे लगाएं, बस्ती कौन सी थी, रसूल कौन से थे, मुल्क कौन सा था, कौन थे, इससे आपको मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो इसमें अमल की बात लिखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला के इस कलाम का मकसद नसीहत है, और नसीहत लेने के लिए लोगों के नाम और जगहों के हालात ज़रूरी नहीं होते, बल्कि इसमें ज़रूरी क्या होता है कि इंसान नसीहत भरा दिल ले। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है तबलीग का, और वो क्या कि जब बात करो तो नामों में ना उलझो, शख्सियात में ना उलझो, जगहों में ना उलझो। इससे नुकसान क्या होता है कि जो असल पैगाम होता है ना, उसका नज़र उससे इधर उधर चली जाती है। आप इमेजिन कीजिए, आपने दौरे कुरान में भी इसका एक्सपीरियंस किया और पहले भी बहुत दफ़ा किया होगा, कि जब स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखाई जाती है तो अमूमन लाइट्स बंद क्यों कर दी जाती हैं? वजह क्या है? क्योंकि जब लाइट्स बंद की जाती है ना, तो सबको स्क्रीन सबसे ज़्यादा चमकती हुई दिखती है। वैसे भी दिख रही थी, लेकिन स्क्रीन के साथ फिर आपको बाकी चीज़ें भी दिख रही होती हैं, कमरे में क्या हो रहा है, कोई उठ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बैठ रहा है। जब सारा कुछ दिखे और उसमें स्क्रीन दिखे, तो स्क्रीन वो असर नहीं डालती जो अंधेरा करके दिखाएं तो उसमें नजर आता है। बिल्कुल इसी तरह याद रखे, कुरान का पैगाम मेरी आपकी नसीहत के लिए क्या है कि हम इस पे फोकस करें, साइड इश्यूज को छोड़ दें, बहसों में ना पड़ें, हुज्जतबाजी ना करें, और जो मेन पॉइंट है, जो मकसद है ना, उस पे गौर करें। आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा का यही प्रॉब्लम है, हम पूरे दीन के अंदर से वो जो मेन नुक्ता है जो इस आज के सबक में से हमें मिल रहा है, और वो क्या है कि लोगों की हिदायत की फिक्र करनी है, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनना है ताकि अल्लाह ताला हमें बाइज्जत लोगों में शामिल करें। आज हमने दीन को बहुत सारी चीज़ों में उलझा के रख दिया, फिकी इश्यूज़ की बुनियाद पे उम्मत को 4, 5, 6, 10 टुकड़ों में बांट दिया, किसी ने एक चीज़ को हाईलाइट किया, किसी ने दूसरी चीज़ को किया, لیکن جو قرآن کا اصل پیغام ہے وہ کیا ہے؟ انذار، لوگوں کو ڈراؤ، کن تم خیرہ امتن، تم بہترین امت ہو. یہ ہٹ گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی دین کی بات آتی ہے تو جھگڑے، اختلافات، اور اس کی بات، اس کی سوچ، اس نے کیا کہا، میں نے کیا کہا، یہ باتیں شروع ہوتی ہے. تو نہیں، مین نقطے پہ فوکس کریں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے اس وقت میں آپ کو تفسیر کروا رہی ہوں. اگر میں ساری بات اس پہ کروں، اس کے اوپر پانچ چھ رائے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ انطاکیہ نام کی بستی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ شام ملک کی بات ہے، بعض کہتے ہیں یہ مصر کی بات ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے، ہم لکھ لیں. اچھا کیا، کدھر؟ یعنی میرے پاس اس کی انفارمیشن بے شمار ہے، کون تھے، کیسے تھے، اور ساتھی کون سے تھے. کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے جن کو تبلیغ کے لیے بھیجا، کوئی کہتا ہے موسیٰ کے دور کے تھے، کوئی کہتے ہیں پچھلی دور کی باتیں تھیں. کس سے تفسیریں تو بھری پڑی ہیں ایک ایک لفظ پہ. لیکن آپ ان ساری چیزوں میں جب الجھ جائیں گے نا، ہو سکتے ہیں آپ تین تفسیروں میں سے ایک بات نوٹ کر سکیں، چار شہروں میں سے ایک نام لکھیں، دوسرا نہ لکھیں، تو آپ الجھیں گے. تو مجھے آپ سے کیا کہنا ہے؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اللہ نے ایک بستی کی مثال بن کے وہ چھوڑ دو وہ کیا تھی. تم اس بات پہ نظر رکھو کہ اس جاہل مرسلون، مقصد پہ نظر رکھنا، یہاں سے پتہ چلتا ہے. ایک دوسری بھی وجہ ہے نام نہ لینے کی، اور وہ کیا ہے کہ ہر دور کا شخص اس کو اپنی ہی بستی سمجھے. جس جگہ اللہ کا پیغام لے کر کوئی بندہ آئے، کل کے دور میں نبی آتے تھے، آج کے دور میں مبلغ ہوتے ہیں. اللہ کسی علم والے کو، کسی تبلیغ والے کو، کسی خیر خواہ کو کسی بستی میں بھیج دے، تو لوگ عموماً کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ سیکھ لیجئے. تیسری بھی ایک وجہ ہے اس کی نام نہ لینے کی، اور وہ کیا کہ نام لینے سے بدگمانی پیدا ہوگی. اچھا وہ فلاں اتنے برے تھے، فلاں نے اتنا تنگ کیا، فلاں نے رسولوں کا انکار کیا. اللہ چاہتا ہے کہ قرآن سنتے پڑھتے وقت ہمارے دل دوسروں کے لیے صاف ستھرے رہیں، اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر نہ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بستیوں کے نام پتہ لگنے یا نہ لگنے سے آپ کی میری ہدایت کا تعلق نہیں ہے. نصیحت جس نے لینی ہے اس نے اشارہ سمجھ لینا ہے، اور جس نے نصیحت نہیں لینی، آپ نام بھی لے لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیشہ اپنی نظر قرآن کے پیغام پہ رکھیں کہ قرآن کی بات آج میرے حالات کے مطابق کیسی ہے. کیا میں فقط زبو ہما میں ہوں؟ کیا میں جھٹلاتی ہوں؟ آج کتنا معروف ہو گیا دین والوں کو جھٹلانا، لفظ مولوی جو دین کا ایک شاعر تھا اس کی بے عزتی کرنا، داڑھی کا مذاق، ملا کا مذاق، مولوی کا، مسجد کا مذاق، یہ سارا کچھ اسی واقعے سے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ جب کسی کے پاس کوئی دین کا پیغام بھیج دے تو اس بستی والوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اور اگر جس جگہ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہاں کو لے لیجئے، تو قریش مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ہٹ دھرمی چھوڑ دو، تعصب چھوڑ دو، ضد چھوڑ دو، اور حق کا انکار چھوڑ دو، ورنہ تمہارا وہی انجام ہوگا جو بھی اس بستی کا انجام تم پڑھنے والے ہو. آپ اپنے بچوں کو بھی اشارتاً سمجھاتے ہیں، دیکھا فلاں کا بچہ ایسے نہیں کرتا تھا پھر اس کے ساتھ ایسے ہوا، دیکھو اس نے باپ کی بات نہیں مانی تو کتنا نقصان ہوا. تو اشارہ دے کر بات سمجھانی زیادہ مناسب ہوتی ہے. دوسری بات اس سے ایک اور پتہ چلتی ہے کہ دو آئے تھے پھر تیسرا بھی آیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے دور میں ایک ایک بستی یا ایک ایک شہر میں ایک سے زائد نبی بھی آئے ہیں. حالات اور واقعات کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے فائدہ دلواتا رہا، لیکن پیغام سب کا ایک ہوتا تھا. آج بھی وہی لوگ دین کا صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں جو نبیوں کے مشن پہ ہیں، جو نبیوں کی طرح انذار کی بات کرتے ہیں، جو نبیوں کی طرح کہ ان سے کوئی مطالبہ نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی ان سے کوئی اپنی ذات کی پوجا نہیں کرانی. اور آخری بات اس میں کیا ہے؟ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، یہ جو لفظ ہے نا عززنا، یہ وہی لفظ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے، غلبہ دینا، قوت دینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی مدد کی. اب یہ تیسرا بھی نبی تھا یا کون تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. بس کہتے ہیں یہ مرد مومن ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا. لیکن آئیے ذرا ان تینوں کا پیغام سنیے، یہ ہے اصل میں میرے آپ کے توجہ کرنے والی چیز. قالو، وہ بولے. کون بولے؟ تینوں بولے. پہلے دو کی بات پھر تیسرے کی تھی نا، تو پہلے دو کی بات ہوتی تو کیا لفظ آنا تھا ادھر؟ ابھی گرامر آپ کو نہیں آتی لیکن بس سمجھ لیجیے، قالا، دونوں نے کہا، لیکن جمع کا صیغہ ہے قالو، سب نے کہا. من تم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم، قوم نے کہا. جو بات میں نے کی نا یہ اوپر فقالو ہے، ऊपर वाले तीनों के लिए। अब ये जो नीचे का कालू है ना, ये कौम का जवाब है। फिर बोल देती हूँ, तीनों का पैगाम एक था, फ़कालू इन इलैकुम मुरसलून। कौम का जवाब सुनिए, कालू मान तुम इल्ला बशरो मिसलू ना, इस पे नंबर वन लगा लीजिए। कौम का रिस्पॉन्स, रिएक्शन और जवाब क्या था, अरे तुम कुछ नहीं हो, बस हम जैसे चंद लोग हो। ये पहला इल्ज़ाम था। अब आप ज़रा से इसको अपने ऊपर लें। आप किसी के पास जाकर कोई बात करें तो वो कहे कोई ख़ास बात नहीं की आपने। आप किसी को कोई अच्छी बात समझाने की कोशिश करें तो कोई कहे वैसे आप खुद भी तो हम ही जैसी हैं, कैसा लगेगा? आपका बच्चा आपके पास है, आपके मामा, आप कोई ख़ास तो नहीं है, बस आप आम सी मामा हैं, कैसा लगेगा? कोई शागिर्द अपने टीचर को कहे हम पढ़ने तो आए थे लेकिन हमें तो कोई ख़ास बात नहीं लगी, आप तो वैसे ही हैं जैसे सब होते हैं। बेदबी का अंदाज है। यहाँ ये बात है, पहला एतराज बात करने वाले पे, अरे तुम तो बस हम जैसे इंसान हो। दूसरा एतराज, वमान जलर रहमान मिन शैइन, रहमान ने तो खरगिज कोई चीज ही नहीं नाजिल की। ये है दूसरा एतराज। क्या कि अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, ये बस मौलवियों की अपनी बातें हैं। सुना भाई अंदाज। और तीसरी बात, इनान तुम इल्ला तकजीबून, और तुम तो हो ही झूठे। अब इस पे बात करते हैं। जब भी दीन की दावत आती है ना किसी जगह पे, किसी इंसान के पास, किसी माशरे के लोगों के पास, तो अमूमन लोग ये तीन बातें करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि ना हम सुने ना बात माननी पड़े। पहली चीज यह कि जो बात कर रहा होता है उसकी जात में खो जाते हैं। कुरान पाक में इसमें पैगाम को बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया कि सारे नबी इंसान थे, रसूल थे। मसल सूरह फुरकान आयत 7, वकालू माली हाजर रसूली याकुलुत्ताम व यमशी फिल अस्वाक, कहते थे ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, यानी कारोबार करता है। फिर इसी तरह से आप देखिए सूरत अलंबिया की आयत 3 में आता है, वसरु नजवल्लजीना ज़लमु हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये जालिम लोग आपस में सरगोशियां करते हैं, यानी ये शख्स कौन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जैसे एक बशर के सिवा आखिर हैं क्या? अफतातून सिहर वअंतुम तुबसिरून, क्या तुम आंखों देखे जादू का शिकार हो रहे हो? यानी एतराज क्या होता था उस दौर में नबियों पर कि ये बशर क्यों है। आज के मुसलमानों में से कुछ का एतराज किया है कि नबी बशर नहीं नूर है, तो अगर नूर होते तो फिर नूर की औलाद होती। आज तक कभी आपने सुना जिब्राइल का बेटे का नाम? मैं आपसे पूछूं, आपको मीकाइल की बेटी का नाम आता है? और आपको आता है इसराफील के बच्चों की शादी हो रही है? हंसेंगे ना आप मेरी इस बात पे, भाई क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं देखा जिब्राइल का बेटा? आप कहेंगे भाई फरिश्तों के बेटे कब होते हैं, फरिश्तों की बेटियां कहाँ होती हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। तो अब आ जाइए, नबियों को जब आप नूर कहते हैं, नूरानी कहते हैं, तो फिर उनकी औलादें क्यों हैं, फिर फातिमा क्यों है, फिर हसन क्यों है, फिर हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा क्यों है? तो याद रखिए कि पहले दौर में लोग नबी को इंसान कहकर पीछे हो गए, आज के बहुत सारे लोग उसको नूर और बशर के फितनों में डालकर अपने आप को दीन से दूर हो गए। वो बशर थे कि वो नूर थे, ये याद रखिए कि वो इंसानों में से आला इंसान और उनकी तालीमात नौरानी तालीमात थी। ये है असल में बात। बहुत सारे लोग दीन की दावत को झुटलाते हैं दीन पेश करने वाले के नाम पे। अब नाम पेश करने वाला एक शख्स भी हो सकता है और एक नाम भी हो सकता है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे देती हूँ क्योंकि आप सब भी अब इसी रास्ते के राही बनने वाले हैं। अभी ये आपके छोटे छोटे कदम आपको बहुत सारी बड़ी बातें सुनने के लिए तैयार करेंगे। और वो क्या कि आप दीन सीखने आएंगे तो लोग पूछेंगे कौन सिखा रहा है, अच्छा उस्ताद को तो कोई इतना जानता नहीं होगा ना, अच्छा होंगे कोई कहीं से आए होंगे, अच्छा कहाँ से आए हैं, अच्छा इनका अकीदा क्या है, अच्छा इनके उस्ताद कौन है, अच्छा इन्होंने किन से पढ़ा है, अच्छा ये किस इदारे से बिलोंग करते हैं, अच्छा वो नूरुल कुरान, अच्छा वो कौन है, ये नूरुल कुरान वहाबी नहीं है, और वो नूरुल कुरान वाले वो तो कुरान कौन से पढ़ाते हैं और किताबें कौन सी इस्तेमाल करते हैं। ये है जवाब, आज आपके सामने जवाब लिखा है। पहला मसला उनका यही होता है क्या कि तुम इंसान हो, यानी शख्सियात पे खो जाते हैं। आज भी मैं हैरान होती हूँ, बल्कि मेरा दिल अंदर से ऐसे जैसे वो जूस नहीं निकलता दबाने से फ्रूट को उस तरह निकलता है, कितने लोग सिर्फ इन नामों की वजह से हिदायत से दूर हैं और अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी नहीं बल्कि बर्छी मार रहे हैं, और उससे भी बड़ी चीज़ मार रहे हैं। किसी का क्या जाएगा, आप आज यहां ना आते तो किसका कुछ जाता? देख लीजिए पीछे मुड़के, एक भी कुर्सी खाली नहीं है। और मैं ना आती तो मेरी जगह पे दूसरा बैठता। वल्ला ही शैतान हर बंदे को मुख्तलिफ रंग से दीन से दूर करता है। जिसको हिदायत की तरफ आता देखता ना, दिल दिमाग में कोई ना कोई मुश्किल डाल देता है। और रियर वो तो याद रखिएगा, आप अपने लिए एक नसीहत बांध लें, मेरी तरफ से अपने दिल को बांध लें, अगर आप मुझे उस्ताद समझते हैं। आप जब कोई दीन की बात सीखने के लिए निकले तो अपने से पूछिए, मुझे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? मुझे बताने वाला नूर है, वो बशर है, वो सुन्नी है, वो वहाबी है, और वो कोई किसी का एजेंट है, और वो किस मसलक से है, वो किस जमात से, ग्रोह से, मेरी बला से मुझे उससे फायदा हो रहा है। देखिए आप बिजली लेते हैं ना, आपके मुल्क का मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो बिजली ऑफर करती हैं। आप चूज करते हैं जो सस्ती, जो अच्छी, जो आपके इलाके के करीब, आप ले लेते हैं। अब वो बिजली बनाने वाला काफर है, मुलहिद है, फाजिर है, कौन है? छोड़ दीजिए बिजली का, तो आपको शायद इतना पता भी ना हो, मुझे भी नहीं पता, मर्दों के काम है। ग्रोसरी लेते हैं रोज, कई लोग तो रोज लेते हैं, माशाल्लाह से सर हिलाएं आपने, तो रोज ना लिया करें, हफ्ते में एक दिन लिया करें। कहाँ कहाँ से लेते हैं? अब आप इसको कैफो बोलते हैं, असल में ये केयरफोर है, अमेरिका में केयरफोर कहते हैं इसको, और दुबई में जब गई तो इसका नाम कारीफोर ही पता नहीं उन्होंने अरबी में रखा हुआ है। अब आप देखिए कि जो भी स्टोर्स हैं आप कहाँ से लेते हैं जहाँ से आपको फायदा होता है? कभी आज तक आपने ये केयरफोर वालों की कंपनी का नाम चेक किया, किधर से है, कौन है, किधर से पैसे आते हैं, किधर है इनके क्या? आप तो वो चीज़ देखेंगी ना कि उसके इंग्रेडिएंट्स ठीक है और दूसरी जगह से अच्छी मिल रही है, फ्रेश है, मैं ले लूँ। और अगर आप जाके बहस शुरू कर दें, हम तो नहीं आएंगे आपके पास, पहले साबित करें आप हैं कौन किधर, तो कहेंगे जी जाइए, बहुत सारे कस्टमर पीछे लाइन में लगे हुए हैं। तो हिदायत से रोकने का पहला शैतान का ट्रिक, बात करने वाले को मशकूक बना दो। और दूसरा भी आगे देख लीजिए, सेकंड थिंग, और वो क्या है? वमानजलर रहमान मिन शैइन, इस पे भी लिख के बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये पेश करते हैं कि अल्लाह ने तो कुछ नहीं कहा, ये तुमने खुद ही कहा। यानी पहले रसूल की बशरियत को चैलेंज करते हैं और एतराजात करते हैं, और अगर आप ये रसूल के बशर होने के सिर्फ आयतों के नंबर नोट कर लें, जाके खुद उनकी तफसीर सुन लें, तो सूरत मोमिनून आयत 24 में भी आपको यही बात मिलेगी। फिर इसी तरह से कौम आद ने हजरत हूद को सूरत मोमिनून 33 से 34 में भी यही बात कही थी। कौम समूत ने हजरत सालेह को यही बात कही थी, सूरत कमर आयत 24 में लिखा हुआ, जाके आप चेक कीजिए। और यही मामला हर नबी के साथ पेश आया, इन अंतुम इल्ला बशरो मिसलुना, तुम हम ही जैसे एक इंसान और इसके अलावा कुछ नहीं हो। और सूरत इब्राहिम आयत 10 और 11 में भी आता है कि नबियों ने सब ने एक ही जवाब दिया था, इन नहनु इल्ला बशरुन, नहीं है हम मगर बशर, मिसलुकुम तुम ही जैसे हैं, खाते हैं पीते हैं। लोगों को यह भी बड़ा चुभता है क्योंकि वो सोचते हैं कि अल्लाह की बात करने वाला कोई माफोकुल फितरत हो, उसके पर हो, वो पानी पे चल सके, वो उड़ सके, वो हवाओं में उछले कूदे, ताकि हमें जब अमल की बात कोई कहे कि नहीं जी नहीं नहीं वो तो बड़े अहम लोग हैं, हम तो आम लोग हैं। यानी जब दीनदार को अपने ही जैसा खाते पीते, जो आपकी ज़रूरियात है उनकी है देखते हैं, तो लोगों को गम पड़ जाता है कि फिर हमें भी दीन पे अमल करना पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि इनको एक अलग कूजे में बंद कर दो, कोने में रख दो, और जब भी कोई बात हो कि जी वो मौलवी साहब नहीं कर रहे, क्या वो फलाह मस्जिद के इमाम साहब ऐसा नहीं आज के दौर में जी रहे, और जाके पूछ लो इमाम काबा कोई बगैर सूद के काम कर रहे हैं कि नहीं, तो लोग आगे से क्या कहेंगे, अरे जी उनकी क्या कहें, वो तो बड़े पहुंचे हुए हैं, वो तो बड़े नेक हैं। ये टोन मैंने खुद लोगों से सुनी है, कभी कोई इन मौजूद पे बात हो, और लोगों को मैंने खुद भी एक दो बार ऐसा तजुर्बा किया है कि मैं बात करूँ ना कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में ही रहते हैं, आज के दौर में हमारे ऊपर कोई सूद नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, और फिर अगर कहें कि जी जी बाहर के मुल्क हैं ये हैं, तो मैं कहती बाहर के मुल्क हैं, अच्छा जी ये है वो है, वहाँ तो ये पाबंदियाँ वो, भाई हम भी इधर हैं, तो आगे से लोग इतनी मैं कहती हूँ मुबालगे भरी बात, अरे आपकी तो क्या बात है, भाई क्यों हमें क्या है, हमारे दो दिल हैं, हमारे दिमाग नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आप याद रखिए, लोगों को बात दीन की करने वाले चाहिए, बड़े अलग से सुपर ह्यूमन उनके साथ बातें फैलाई हुई हैं, पीर साहब पानी पे चलते हैं, ये सारी जिंदगी सोए नहीं, और ये 3 साल से ऐसे खड़े हैं, और ये खाते नहीं और नहाते नहीं, ताकि लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने जैसा बंदा लोगों को दीनदार ही नहीं लगता। और इसमें एक हमारा मजहबी तासुब भी है, बास दीनदारों ने ये पेश भी किया, वल्लाही मैं इस पे भी अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ, अगर मैंने भी कभी ऐसा किया तो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को एक नट शेल में बंद करते हैं, एक हॉल होता है ना कि हम नेक लगें, हम थोड़ा सा अपने आप को लोगों से अलग नुमाया करें। बस मैं इधर आई और मैं आपके सामने आऊं और मैं पूरा बिल्कुल यहाँ चोगा पहन के निकाब भी ले लूं ताकि आप सब मुझे अपनी निस्बत नेक समझें, और आप सब खाना खाएं तो मैं कहूँ नहीं नहीं हम नहीं खाते खाना, और आप सारे चाय पे मैं कह तौबा करे चाय जहन्नम का खाना, तो आप खाएंगे भी पियेंगे भी और अपने कपड़े भी खींचते रहेंगे और साथ दिल में कहेंगे ये भाजी कितनी नेक है, ये कितनी अच्छी है। अब आप क्या होगा, आप जिस जगह खड़े हैं उससे एक फुट नीचे चले गए, ऐसा से कमतरी में जाएंगे, और मुझे आपने एक फुट ऊपर कर दिया जो मैं थी, मेरा आपका कभी रेपो ही नहीं बनेगा, वेवलेंथ नहीं मिलेगी। आज दीनदारों में से कुछ ने ये किया, रात जाते के नेक, दिखावे का तकवा, एक्सेसिव कह लीजिए के तकवा और गॉड कॉन्शियसनेस। भाई अगर आप जैसे औरतों में मैं भी अगर आप ही की तरह बैठी हूं तो क्या हर्ज है। यकीन करें मैंने अबाया और स्काफ जो पहना हुआ है ये मैंने इस कुरान की ताजीम के लिए पहना हुआ है। हालांकि कुरान पढ़ते हुए अगर मैं सर से दुपट्टा भी उतार दूं मुझे गुनाह नहीं होगा, ये अलग बात है कि आप मुझे घूरेंगे कि ये कैसी मॉडर्न बाजी है, गले में दुपट्टा लेके पढ़ा रही है। बात समझिए करना क्या है कि यहां से उठ के बाहर देखेंगे किसका क्या रूप है, जहां अल्लाह ने कहा वहां कैसी होती हूं। जब अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया तो क्या रोजे में मैं खा रही हूं, सब पढ़े नमाज और मैं बैठी हूं, इन चीजों से परखिए। याद रखिए एक मैंने वाक्य सुनाया था पीछे कहीं कि एक शख्स था तो वो किसी की बड़ी खूब तारीफें सुनकर के बड़े बुजुर्ग हैं बड़े पहुंचे हुए तो उनके पास चला गया, कहा मैं आपके पास रहूंगा। पहले लोग इसलिए भी पास रहना पसंद करते थे बाज दफा कि देखें कि इनकी क्या नेकी है जो हमें दिखे। खैर काफी दिन रहे तो ना उनकी कोई करामत दिखी ना उनका कोई मौजजा दिखा। खैर थक के मायूस हो गए निकल के जाने लगे, कहा मैं आपको बताऊं कि मैं आया तो था आपकी कोई करामत देखूं, मैंने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है तो मैंने तो इतने दिन में आपकी कोई करामत नहीं सुनी। कहा अच्छा सुनो ये बताओ जिस दिन से तुम आए हो क्या तुमने मुझे फर्ज नमाजें वक्त पे पढ़ते देखा, देखी है, मुझे कोई सुनना छोड़ते देखा है, नहीं नफिल जो जहां हुक्म मैं करता हूँ, कभी तुमने मुझे कोई हराम खाते हुए देखा और तुमने मुझे किसी मकरू चीज में देखा। कहा नहीं ये नहीं देखा माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल ठीक इंसान है। कहा जाओ फिर इससे बड़ी और कोई करामत नहीं आज के दौर में कि कोई बंदा पांच वक्त की फराइज का आदि सुन्नतों का और नवाफिल का, और तुम्हें कौन सी करामत चाहिए। तो याद रखिए शख्सियात में नहीं खोना। और ये जो दूसरी बात है कि अल्लाह ने तो कुछ भी नहीं नाजिल किया तो उसकी वजह याद रखिए क्या होती है कि ये कह दो कि ये अल्लाह ने तो बड़ा आसान दीन दिया था ये मौलवियों ने मुश्किल कर दिया। ये भी एक बड़ी मुश्किल चीज होती है लोगों की, क्या वमा अंज़ला रहमान मिन शय्यिन, और देखिए लफ्ज रहमान है कि अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, बस इन्होंने दीन मुश्किल किया हुआ। आज भी लोग कहते हैं कहां लिखा है, किधर लिखी है ये बात, किधर है पर्दा दिखाओ, किधर है हिजाब, कहां लिखा है शराब हराम है। भाई आपने कुरान पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो नहीं है, हदीस पढ़ी नहीं, हदीस तो नहीं पढ़ी। याद रखिएगा खुद पढ़े एक लफ्ज नहीं होते और सुनी सुनाई बातों पे आके बाज दफा लोग दीनदारों का इम्तिहान ले रहे होते हैं। वजह क्या है कि इसको सारी बात को लगा दे दीनदार के नाम पे और खुद पीछे हो जाए। और तीसरी बात है कि इनान तो मिल्ला तकजीबून, तुम तो झूठ बोलते हो, आपको मुंह पे कोई कह दे आप झूठी हैं कैसा लगेगा। आपके मियाँ आए और एकदम कहे के खबरदार झूठ ना बोलो तुम झूठी औरत हो, आपकी बहनें कह दे तुम झूठी बहन हो, तो आपकी दोस्तें आपको तुम बहुत झूठी हो, कितना लेट डाउन करते थे लोग नबियों को, आराम से बैठे रहते थे। हम होते माइंड करके घर जा चुके होते इस वक्त, सॉरी हम नहीं कर सकते ये काम, हमसे इतनी बातें नहीं सुनी जाती। तो लिख लीजिए इसमें एक आपके मेरे अमल की बात है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, अपनी जात के बुत को पूजने वाले दीन के नहीं रहते। यहां अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लग जाए और मैं पाऊं पटकती हुई अपना बैग उठा के बाहर निकल जाऊं, वल्लाही मैं अल्लाह के लिए नहीं आई थी, मैं अपनी जात के लिए आई थी, आपने मेरी अना पे चोट मारी मैं उठ के चल पड़ी। खैर आगे नबियों का जवाब सुनिए, कालू रब्बुना यालम इन्ना इलैकुम लमुरसलून, बहसों में नहीं पड़ते। ये अगला नुक्ता इसमें, अब जवाब तो बड़े उनको भी आते थे, दे सकते थे ना दलाइल, लेकिन कहते हैं अल्लाह को खूब पता है हम कौन है, अल्लाह की नजरों में सच्चे बन जाए। सारी दुनिया आपको झूठा कहे, एक दफा अल्लाह से पूछे अल्लाह ये सच बोल रहे हैं कि झूठ, झूठ ही बोल रहे हैं, तो फिर अल्लाह तुझे पता है ना मैं सच्ची हूं, तो मेरी परवाह से मेरी बला से। देखिए इसको एक बड़ी पर्सनल सी एग्जांपल से समझिए, आपके जिंदगी में हो सकता है कभी आई हो। हमारे कल्चर में बहुत आम है कि बाज दफा शादी के बाद जब औरतें ससुराल में जाके रहती हैं तो ससुराल में बहुत गलत फहमी आ जाती हैं, कभी नंदों से कभी सास से कभी देवरानी जिठानी से, कुछ ना कुछ घर में इश्यूज चलते हैं। लेकिन अगर आपका शौहर आपकी पोजीशन समझता है और वो आपको प्रोटेक्ट करता है और वो कहता है कि बेगम मुझे पता है घर का माहौल ऐसे, बस आप सब्र कर लें, तो मैंने सुना है बहुत सारी औरतें फिर कहती हैं भाई हमारे शौहर मुतमईन है तो हमें कोई फिक्र नहीं, रह जाती हैं, लेकिन अगर खुदा नास्ता शौहर शक करने लग जाए और उससे ना बने तो बात नहीं बनती। अब ये सिर्फ एक दुनिया की मिसाल दी आपको, जब घर वाला आपसे राजी है तो फिर दूसरों की क्या अहमियत, तो जब अल्लाह राजी है आपसे तो दूसरों से क्या लेना देना। सारे ही मुझे बुरा कहें, सारे ही मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं, सारे ही मुझे कुछ ना कुछ समझे, तो मेरी बला से मुझे आपसे लेना भी क्या, मेरा आपसे ताल्लुक भी क्या। ये तौहीद अगर दिल में आ जाए ना तो फिर बंदे की भी अल्लाह के हुक्म से मदद होती है। जब रब राजी तो जग राजी, जब जग राजी और रब नहीं राजी तो मेरी फिक्र है। इसीलिए कहते हैं रब न यालम इन्ना इलैकुम लमुरसलून। और आप देखिए पहले कहा इन्ना इलैकुम मुरसलून, इसमें कमल का नुक्ता है। अब तनकीद हुई ऊपर बातें हुई दीन के नाम पे तो कहा इन्ना इलैकुम लमुरसलून, और ये लाम ताकीद का है, बस इतना लिख लें, इसमें अमल का नुक्ता लिखें। ये सारा सबक आज मेरे और आप ही के लिए है, क्योंकि हम में से हर एक किसी ना किसी एंगल से आज दीन ही के लिए निकला हुआ है। जितनी मुखालफत ज्यादा हो आपकी उतना अपनी बात पे जम जाए। लाम आपको ये बता रही है लम और सलून। हम कहते हैं हाय झुटला रहे हैं तो फिर गलत होगा, ठीक नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं, आप मुखालफतों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, वो यहीं से पलट जाए जिसे जान हो प्यारी। और बिलीव मी मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है, डे वन से लास्ट डे तक वही लोग जमे रहते हैं किसी काम पे जिनको मकसद प्यारा होता है।